अब आगे एक और साजिश का जिक्र है, पहले उसको समझ लें तो फिर होगा। जब यहूद ने देख लिया कि हर तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर कर सके, डरा सके, थ्रेटनिंग वट एवर जो शुरू से चल चला रहा था वो नहीं हुआ, तो अब उन्होंने खुफिया साजिशें की। उसमें से एक साजिश क्या थी, दिखाने के लिए मुसलमान हो जाओ, सबको अनाउंस करो आई एम एक्सेप्टिंग इस्लाम, सब तरफ मैसेज भेज दो। लोग कहेंगे अच्छा वाकई वो मुसलमान हो गए, कर दिया, अच्छा ठीक है फिर चलो अल्लाह इनकी हिफाजत करे। फिर अगले दिन या उसी दिन शाम को फिर एक डिक्लेरेशन दो, नो नो सॉरी मुझे तो मुसलमान हो के पता चला है कि इनके अंदर तो इतनी बुराई है, अब मैं डिक्लेयर करके इस्लाम से निकल रहा हूं। कैसे, क्या, क्यों, वजह समझ गए आप लोग? ताकि लोग इस्लाम के बारे में मिसअंडरस्टूड करें। जैसे आप देखें ना, किसी की बच्ची का रिश्ता किसी खानदान में होता है और वो लड़की वहां से वापस आ जाए, तो बाकी लोग भी सोच में आएंगे ये खानदान अच्छा नहीं होगा। कल उसी खानदान के किसी और लड़के का रिश्ता किसी और बच्ची के लिए आ जाए तो लोग किससे पूछेंगे, तुम सुनाओ तुम उनके घर रह के आई हो, तुम बताओ वो कैसे हैं, है ना? जो छोड़ के आता है ना वो दूसरों के लिए तरने वाला होता है। याद रखिए ये जुमला लिख लें, किसी गिरोह या किसी टीम में से वो शख्स जो अलग होता है ना, वो मुखालफीन के लिए सबसे कीमती होता है। उसको बड़ी बड़ी मुराद दिखाएंगे, बड़े बड़े नजराने पेश करेंगे, तोहफे तहाइफ देंगे, आओ बैठो हमें जरा उनकी बातें तो सुनाओ, ये अंदर खाते क्या होता है, अच्छा सुनाओ ये ऊपर ऊपर तो ये है अंदर क्या है। बात समझ गए? अब यहां से आगे तक हम देखेंगे इनकी मुख्तलिफ साजिशें हैं, आइए देखते हैं। यानी बहुत ही खून गर्म होने लगता है इन आयतों को पढ़कर, अगर जाहरी तौर पे पढ़ें, लेकिन असल में तो मुसलमानों के साथ अगर ऐसा आज भी हो या कल हुआ था तो उसकी वजह सबको पता है कि मुसलमान का अपना अमल होता है। तो अल्लाह ताला ने अब उनके अंदर की जो साजिशें थी उनका पोल खोला। मैं चाहूंगी कि इकट्ठा पढ़ूं, दो तीन चीजें हैं लेकिन रवैये एक ही हैं। आयत 69, ताइफतु मिन अहलिल किताब, अहले किताब का एक गिरोह ये चाहता है, लो युदिल्लूनकुम, काश ए मुसलमानों वो तुमको बहका दे। उनके अंदर की ख्वाहिश यह है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से मुतनफर कर दे, तुम्हें तुम्हारे दीन से बदगुमान कर दे, अगर वो कर सके। ठीक है, ये तब उनके अंदर की ख्वाहिश है ना, तो क्या वो इस ख्वाहिश में कामयाब होंगे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? नो, वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो गुमराह कर सकेंगे मगर अपने ही आप को। वमा यशुरून, और उनको इसका शौर ही नहीं है, यानी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बात वाज़ह है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से गुमराह कर दें, मोमिनों को अच्छा ना लगे अपना ही दीन, इनकी अपनी ही नस्लें पीछे हो जाएं तो मान जाएंगे नहीं। और ये बिल्कुल ऐसी आयत आप पीछे पढ़ चुके हैं, कहाँ, सूरत बकरा गालिबन आयत 90 है, नंबर चेक कर लीजिएगा। वद्द कसीरु मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफारा, याद आ रही आयत, अहले किताब में अक्सर लोग चाहते हैं कि काश तुम्हें इस्लाम से दूर कर दें। आप देखिए, जिसको किसी चीज की ख्वाहिश होती है ना, कोई भी चीज आप इमेजिन करें ना, खाने की ख्वाहिश, सर्दी से बचने की ख्वाहिश, कोई भी, तो बंदा उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिर जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। इनकी ख्वाहिश ये है ना, तो मान लो कि फिर इनकी कोशिशों का रुख भी उधर ही है, इनकी जिद्दोजहद भी यही है कि मुसलमानों को मुर्तद कर दे। इस मकसद के लिए फिर हर मुमकिन तरीके से शुबहात पैदा करते हैं। क्या फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। वमा ये दिल्लू न इल्ला अनफुसा हूं, अपने आप को गुमराह करते हैं। कैसे अपने आप को करते हैं? इसका जवाब आप सूरत नाहल 88 में ले सकते हैं। अल्लज़ीन कफरू वसद्दु अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फौकल अज़ाबी बिमा कानू युफ़सिदून, जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, हम इनके अजाब पर अजाब का इजाफा कर देंगे इसके बदले जो वो फसाद करते थे। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो मिसचीफर होते हैं, यानी खुद फसाद डालते हैं, कुछ होते हैं जो फसाद का जरिया बनते हैं, ऐसी कोशिशें करने वाले सिर्फ खुद ही फसाद नहीं डालते, बल्कि वो दूसरों को फसाद डालने में मददगार होते हैं। जैसे कुछ लोग खुद खामोश रहते हैं लेकिन लड़ाइयां करवाते हैं, खुद अच्छे बने रहते हैं, दूसरों को वो बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो क्या पता चला कि जब मुसलमान सही मुसलमान होता है तो वो इनकी ख्वाहिशात को पूरा होने नहीं देता। सवाल पैदा होता है, कैसे ये ख्वाहिश अपनी कैसे पूरी करते हैं? तदबीरें करते हैं, बहसें करते हैं, मनाजरे करते हैं और खुफिया साजिशें करते हैं। दोस्त बन के दुश्मन साबित होते हैं, और ये वो लोग हैं कि जो ऐसे काम कर करा के अपने आप को दूसरों की नजरों से भी गिराते हैं और अल्लाह की नजरों में। अब ये जो लफ्ज़ वद्दत हमने पढ़ा, ये तात और लफ्ज़ की नहीं है, ये मैं आपको इशारा दे रही हूँ, वुद लफ्ज़ था असल में। वुद कहते हैं मोहब्बत को, दोस्ती को। अलवदूद अल्लाह ताला का नाम है। ता कहाँ से आ गई, कोई बताएगा? ताइफतुन की वजह से, मुअन्नस की ता है, ताइफा की वजह से। और ताइफा किसको कहते हैं? उर्दू में भी हम बोलते हैं तोए वाफा, तवाफ लफ्ज़ भी इसी से है, चक्कर लगाना। ताइफा कहते हैं ग्रुप को, ट्रूप को, सारे साथ साथ चलते हैं ना, खूपने की जगह। इसी तरह चौकीदार को भी ताइफ कहते हैं, क्योंकि वो रात को चक्कर लगाता रहता है, हिफाजत करता रहता है। ताइफा किसी चीज के टुकड़े को भी कहते हैं, लोगों की जमात जो हम आहंगी, फिक्रो ख्याल या एक मजहब की बुनियाद पर मुत्तहिद हो, यानी हम ख्याल लोगों का एक छोटा सा गिरोह ताइफा कहलाता है। इसकी कोई मुअय्यन तादाद नहीं थी अरबों के बीच में, कभी छोटी भी हो सकती थी, कभी बड़ी भी। और तवाफ कहते हैं ऐसे खादिम को जो नहायत नरमी और इनायत से खिदमत करे, क्योंकि वो भी घूमता ही रहता है ना, छोटे लड़कों को देखिए, छोटी इधर आ, नेकी इधर आ, कपड़े निकाल, बर्तन दो, अपने घरों में जाके देखे कितनी छोटियां छोटे फिर रहे हैं, तो उसको भी तवाफ कहते हैं। इसी से लफ्ज तूफान भी है, हमागीर मौत, वो मुसीबत या हादसा जो कौम को चारों तरफ से घेर ले और हर चीज पर छा जाए। फिर इसी तरह से रफ़े हाजत के लिए भी ताफ या तूफू के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, यानी रफ़े हाजत के लिए जाना। बार बार चक्कर लगाते हैं ना बाज़ दफ़ा वॉशरूम के लोग, तो उसके लिए भी लफ्ज ताफ या तूफू ही से आते हैं। फिर जन्नत में जो लड़के घूमे फिरेंगे या जो जाम चलाए जाएंगे शराब के, उसके लिए भी ये लफ्ज आता है। लेकिन यहाँ आप समझ गए, ताइफा से मुराद एक गिरोह है जो हम ख्याल था। अगली आयत पे चलिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या अहलल किताब, देखिए छोटी सी आयत है 5-6 लफ्जों की, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना बी आयतिल्ला, तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयतों का, क्या हो गया तुमको, हैं? वंतुम तशहदून, जबकि तुम खुद हाजिर हो, तुम खुद गवाह हो। किस बात के गवाह हो, किस बात पे हाजिर हो? कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये वही नबी हैं जिसका जिक्र तुम्हारे किताबों में है। अब ये इनके शऊर को बेदार किया जा रहा है, और याद रखिए शऊर को बेदार करने के लिए कम बोलना पड़ता है। छोटी आयत बड़ा असर। तुम्हें क्या हो गया, जैसे आप अपने बच्चे को डांटे, होश करो, समझ नहीं है तुमको, बस लिमा तक फुरोना, क्यों लड़ रहे हो, क्यों कुफर कर रहे हो, वन तुम तशदून, तुम्हारे दिल गवाह बन चुके हैं इस बात के कि ये नबी सच्चे नबी हैं। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि तुम तो खुद गवाही देते हो कि नबी सल्लम की जिंदगी पाकीजा है, सहाबा कराम की जिंदगियों पर आपकी तालीम और तरबियत के हैरत अंगेज असर आता है। ये सारी चीजें तुम्हारा दिल मानता है, तुम मानते हो कि इस तालीम से फायदा हो रहा है लोगों को, फिर दुश्मनियां करते हो। यानी इसको आप जिस एंगल से भी समझेंगे आपको बात समझ आ जाएगी कि जब जानते बूझते सिर्फ तासुब की बुनियाद पे कोई किसी से मुखालफत मोल ले तो ये अंदाज इख्तियार किया जा रहा है, कि अनजान हो तो फिर तो और बात है, तुम तो जानते बूझते ये काम कर रहे हो। जैसे नया बंदा आपकी मुखालफत करे, आप कहेंगे इसको पता नहीं आप क्या करते हैं, लेकिन वो बंदा जो आपके साथ रहे, आपके मकसद का हिस्सा हो, फायदा ले दे चुका हो, कल वो आपके खिलाफ कोई कमेंट दे दे या उसका अमल दिखे, तो आप कह सकते हैं ना कि ये बातें क्यों करते हो भाई, आपको तो सब कुछ पता है। बिल्कुल यही बात कह के असल में अल्लाह सुब्हान तआला इनको एहसास दिला रहे हैं कि तुम अनजान नहीं हो, तुम बहुत समझदार लोग हो और तुम अपने आप को जानते हो। खैर अगली आयत पे चलिए। ये सारी आयतें असल में एक ही बात है, या अहलल किताब, अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक बिल बातिल, तुम हक के ऊपर बातिल का मलम्मा क्यों चढ़ाते हो? व तक तुमून अल हक का वान तुम तालमून, और तुम तो हक को जानते बूझते छुपाते हो। याद आइए सूरत बकरा की आयत 42, क्या थी वहां? वला तल्बिसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। बिल्कुल वही अंदाज है, वहां पांचवा रुकू था, यहां आप देख लीजिए ऑलमोस्ट वही जगह बन रही है। यानी ये सारी बातें करके जहन साजी की गई उस मजमून की तरफ जो आपको मैंने अंदाजा दिया कि उनकी साजिश क्या थी और ये मुसलमानों को किस तरह से जिक्र थे। और हक को बातिल से मिलाने की कोई मिसालें देने की जरूरत तो नहीं है। आज के दौर की मिसालें आप खुद ढूंढें, मीडिया से देख लें, अखबारों से पढ़ लें, आपको जितने इल्जाम और जितने इख्तलाफी बातें इस्लाम के बारे में लोगों की दिखेंगी वो किसी और चीज पे नहीं दिखी जाएंगी। तो अब आगे अल्लाह सुबहान तआला उनकी ये बातों को ला रहे हैं कि तुम करते क्या हो। ये है वो आयत जिसमें खास तौर पे वो साजिश थी जो कि पकड़ी गई। और वो कैसे पकड़ी गई? वकालत ताइफतु मिन अहलिल किताबी, और कहता है गिरोह अहले किताब में से, आमिनु ईमान लाओ, बिल्लजी उन्जिला लल्लजीना आमनु, उस चीज पर जो नाजिल की गई ईमान वालों पे। क्या थी वो? कुरान, इस्लाम। कब? वजह नहारी, दिन के शुरू हिस्से में। वज्ह चेहरे को कहते हैं ना, तो जब सूरज खूब चमका होता है तो वो वजह नहारा है। वकफुरु, और कुफर कर दो, इनकार कर दो, आखिरहू, इसके आखिर में, दिन के आखिर में इसका इनकार कर दो। वजह, नीयत कैसे मिलेगा? क्या? लअल्लहुम यरजिउन, शायद इस तदबीर से इनमें से भी कुछ फिर जाए। बात समझ गए? किस चीज से फिर जाए? इस्लाम से फिर जाए। ये है वो साजिश जिसके लिए ये पिछली 3 आयतें आई थी। यहूद के गिरोह की एक साजिश नबी सल्लम की दावत को नाकाम बनाने के लिए तैयार हुई। और इनका ख्याल क्या था कि जो एक दफा इस्लाम में आ जाता है वो वापस नहीं आता। मारो, कूटो, तशद्दुद करो, भूखा प्यासा रखो, जान से चला जाता, इस्लाम नहीं छोड़ता। इससे उनके दिल में इस्लाम की एक धाक बैठ चुकी थी कि इसके अंदर कोई कशिश जरूर है, कोई सच्चाई, कोई मिठास है जरूर। कुर्बानियां देने को तैयार हो जाते हैं लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा इस्लाम की ये रेपुटेशन, ये साख तोड़ते हैं ताकि लोग, हाँ इधर से भी जाके लोग वापस आ ही जाते हैं, इसके अंदर ये भी कुछ अच्छा है कुछ अच्छा नहीं। और याद रखिए ये लोग आज भी करेंगे, पहले ज्वाइन करेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरे पूछेंगे खुशी खुशी आपने क्यों छोड़ दिया। अच्छा जब ज्वाइन करें तो कोई नहीं पूछता क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि पता होता आगे से आपने कहना आप भी ज्वाइन कर लें। छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? ताकि चस्के ले लेके सुन, बस एक्चुअली बस मैं तो बहुत सोच के गई थी पर अंदर बड़ा बिगाड़ है और फायदा कोई नहीं और ये और वो है। ये तोड़ने की साजिश थी जो उन्होंने इख्तियार की कि इस्लाम की ये रेपुटेशन टूट जाए कि एक दफा जो इसके साथ आता है वो नहीं है। और वही बात है, घर का भेदी लंका ढाए, वापस चले गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। याद रखिए जो बंदा जो लेने आता है उसको मिल जाता है, कंकर टोलने वाले को कंकर ही मिलते हैं। अंदर से जिसको खराबियां चाहिए होती उसको मिल जाती है, और होती भी है, हर जगह होती है। आपके किचन में भी वो चीजें होंगी जो ड्राइंग रूम में नहीं होती। तो बहरहाल जो जिस नसीब से आता है, कुछ हिदायत ले जाते हैं, कुछ बुराइयां चुन के चले जाते हैं। और इस नाते से उन्होंने अपने आप को पीछे किया, और ये एक मुनाफिकाना साजिश थी, शरारत थी। आप कहते कि इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है, उसकी वजह यह है कि एक शख्स जब इस्लाम से पलट जाता है ना तो वो जरासीम बन जाता है, वो जहां जाएगा वो इस्लाम के खिलाफ बातें करेगा, लिहाजा इनसे निपटने की बात है। अब ये सुनकर आपको कुछ नहीं हुआ? आज भी ऐसी बातें, आपको पता है आज भी कुछ अखबारों के मैंने टुकड़े पिछले सालों में शेयर किए थे कि वेस्ट में लोगों ने आज भी ये साजिश की कि लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए आप इस्लाम कबूल करें फिर छोड़ें। और आप सिर्फ एक लफ्ज लिखिए जाके गूगल में या यूट्यूब में, एक्स मुस्लिम, EX डाल के ना, मुस्लिम डालने, बस फिर देखिए जो कहानियां निकलेंगी वो बोलो एक्स मुस्लिम, आज का प्रीस्ट कल का मुस्लिम, वो यानी उन्होंने उसमें कहानियां पूरी आम की हुई है कि वो लोग जो कल तक तो मुसलमान थे लेकिन आज क्रिश्चियन या जियू या कुछ भी नहीं हो गए। तो आइए उनसे सुने कि इस्लाम क्या है। अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारे बच्चों की जहनों की हिफाजत करें। आज भी आपको पता है कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चों के जहनों को कंट्रोल किया जा रहा है कि अल्लाह की बना इस्लाम को मशकूक करके। आज बच्चे साफ कहते हैं कुछ घरों के कि वी डोंट बिलीव इन कि इस्लाम इज द राइट रिलीजन। फिर आज एक फैशन चल पड़ा कुछ भी नहीं दीन, वो चाहते हैं कि इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए, शुबहे पैदा हो, इस्लामी तारीख का हुलिया बिगाड़ कर पेश किया जाता है, वो चाहते हैं कैसी चीजों को छोड़ दें। अच्छा ये एक बात समझ आ गई, ये पहली साजिश थी, वन लिख लें। अब दूसरी बात जिसके अंदर से आपको तासुब के कतरे गिरते हुए दिख रहेंगे, वला तुमिनु, और तुम हरगिज़ नहीं मान लाना, इल्ला लिमन तबिय दीनकुम, सिर्फ उसकी बात का जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। आज ये जुमला लोग बोलते हैं, हम अपने मसलक के सिवा किसी और की बात नहीं पढ़ते, किसी और की बात नहीं सुनते। देखो, किसी की बात ना मानना मगर जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। कुछ लोग होते हैं ना, वो दीन की बात सुनते हैं ना तो अपने पिछले इल्म की बुनियाद पे या रोशनी में सुनते हैं। कोई बात उससे पिछले वाले से मैच करे कहते ठीक है, और जरा कोई बात पिछली जिंदगी में सुनी बोली बात से इख्तलाफ हो कहते हैं हाँ ये वहां भी होंगे, हाँ ये कोई किसी के एजेंट जरूर होंगे, और ये वैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। तो याद रखिएगा कि जिस रंग की ऐनक डालेंगे ना आपको वही दिखेगा बाहर। यहां ये बात करके अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के कान खोल दिए कि जरा सा बच के रहना, ये तुम्हारे इस्लाम के बारे में कहते हैं। इनको ये खतरा था, असल में ये जो गिरोह साजिशें करता फिरता था, इनको खतरा क्या था कि अगर हम चंद घंटे नबी सल्लम के पास गुजारेंगे तो कोई ऐसा ना हो कि हम में से किसी का सीना खुल जाए, हम में से किसी के दिल में ईमान आ जाए, क्योंकि अल्लाह की नबी की बातों में सच्चाई थी। और याद रखिए, सच में तासीर है, ये जो अट्रैक्शन होती है ना ये सच की होती है, कशिश सच में। झूठे किस्से कहानी सुने वक्ती तौर पे कानों को अच्छा लगता है, बाद में हम कहते हैं ऐसी फरलाटियां ही मार रहे थे, ऐसी भी बात नहीं है। ये कोई नहीं हो सकता कि कब्र में से बुजुर्ग साहब का हाथ निकला और उन्होंने कहा जीते रहो जाओ ये होगा वो होगा, ऐसी बातें बाद लोग आगे करते हैं, आम करते हैं। मैं सोचती हूँ ये कोई बातें आम करने की हैं, फलां जगह ये हुआ, फलां की बात सुनी, फलां ने उसको कहा, उसको कहा। कहानी सच्ची हो या झूठी हो, देखे सच बात करें, आधे टूटे फूटे लुकनत भरे जुमले बोले, लेकिन अगर आपके अंदर तड़प है और आप हक बयान करते हैं लोग आपकी बात सुनेंगे। और बास लोगों के किस्से कहानियां रवायतें फजाइल बातें ऐसी कि सिर्फ लोगों को मशहूर करने के लिए, ये हुआ वो हुआ, और कई लोग ऐसी सुनते हैं सुनाते हैं। मैं तो 5 मिनट से ज्यादा ऐसी स्पीच नहीं सुन सकती जिसमें साबके और लाखे और बातें और कहानियां और ये हुआ वो हुआ। अभी चंद दिन पहले मुझे किसी ने एक लिंक भेजा, ऐसे ही कहां से खुल गया मुझे नहीं पता, तो कोई बुजुर्ग थे तो वो जो वाकया बयान कर रहे थे खुद भी हांप रहे थे रो रो के, वो जो लोग थे ना वो खड़े होके सीना को भी पे आ गए, और मंजर को जैनब रोई फिर उधर आई फिर आवाज आई फिर ये हुआ फिर उसकी माँ ने कहा मैं तेरे पास, इस तरह की बातें एक से ज्यादा थी। तो मैं सोच में पड़ गई कि अब ये हो गया जो था गया, इसमें से आपको मुझे क्या मिला। 4-5 मिनट का क्लिप था ऐसे मैंने देखा, मुझे तो हिदायत के लिए उसमें कोई बात नहीं मिली, किसी की चादर उधर गई तो किसी की हुई, और लोग ऐसे रो रहे हैं कुरान पढ़ के नहीं रोते। फिर 2 दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजी, अल्लाह माफ करे हम सबको, तो कुरान पढ़ रहे थे कोई, जैसे वो महफिल है नहीं पाकिस्तान में किरत का मुकाबला होता है, पाकिस्तानी होगा आई थिंक, सो लोग पाकिस्तानी लग रहे थे, अल्लाह बस मेरी आपकी इसलाह कर दे। पढ़ क्या रहे थे, आखिरी पारे की सूरतें, वल्लाह ही क्यामत का दिन। और जो ही वो पढ़ रहे थे, वो टोन से भी पढ़ रहे थे, और जो जाहिल लोग बैठे थे ना खड़े होके वाह 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 हा हा, मुझे किसी ने भेजा कि देखिए ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने कहा अगर वो इस आयतों का तर्जुमा जान रहे होते तो इस वक्त रो रहे होते, और वो सुबहान अल्लाह वाह वाह। और वो जो मैनेजमेंट के जो वहां वो कोई जलसा ही था ना, तो उसमें लोग को कह रहे थे आराम से सुने बैठे बैठे, फिर आप और भी इंजॉय करेंगे, आप अभी और भी अच्छा पढ़ेंगे, आप और भी मजा लेंगे। और आयतें रोने वाली थी, 2-3 जगह से कुरान की आयतें थी कि उसका तर्जमा क्या पूरा क्यामत के मंजर और आसमान के फटने की, और जो बैठे थे किसी के रवैये से नहीं लग रहा था इनको मजा, खड़े होकर धमाल पार डालनी शुरू हो गए लोग वाह वाह करते और सुभान अल्लाह करते हुए। क्या मिला आपको मुझे, सिर्फ लफ्जों के खेल है, ऐसी बातों को फौरन डिलीट कर दें, इससे आगे इसका वक्त नहीं है। कौन है, किसकी कब्र में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नेक कौन है बद है, मुझे आपको तो ये पता है कि बस तुम अपने अमल की फिक्र करो। तो कहते थे कि ऐसा ना हो कि हमारा दिल खुल जाए, शौरी निफाक की ये अलामतें बयान की जा रही हैं। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि देखो ये अपने साथियों को जब नबी सल्लम की महफिलों में भेजते थे तो साथ ये नसीहत करते थे वला तुमिनु, देखो इनकी बातें सुन तो लो लेकिन मानना ना, हाँ इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, जो तुम्हारे दीन से मुतल्लिक है वो मान लो बाकी ना मानना। यानी ये बहुत सोचे समझे मुनाफिक थे, खौफ था इनको कि कहीं ईमान इनके दिल में ना आ जाए। और जब कौमों का ईमान खत्म हो जाता है और उनके ईमान को दीमक चाट जाती है तो ऐसा ही होता है। जवाब दे दो इनको, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दो हिदायत तो बस अल्लाह की है, असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है। यानी ये नबी आप नहीं इनको हिदायत दे सकते। कितनी तड़प थी नबी के दिल में लोगों को हिदायत देने की, आप पढ़ के देखते हैं तो रोना आ जाता है। आज हम तो ठंडे दिल लेकर पढ़ते हैं कुरान, हम तो ठंडे ठंडे ठार लोगों के अंदर मिलते हैं। आप तड़पते थे कि अल्लाह ये आते साशे करने हैं, हिदायत दे दे इनको, ईमान दे दे। कहा नहीं नबी जी नहीं, इन्नल हुदा, हिदायत अल्लाह की और आप भी नहीं दे सकते, अल हादी अल्लाह है आप नहीं है, यानी जो हिदायत लेने के लिए आया नहीं उसको नहीं मिलेगी। 1000 आइटम होंगे कीवी में, आप वही लेके आते हैं जो लेने जाते हैं, कोई एक दो आप पकड़ लेंगे देख के ले लेते हैं, नहीं तो सोचा ले लिया, हर चीज आप नहीं लेके आते। इसी तरह याद रखें हिदायत की महफिल में बैठकर भी लोग हिदायत नहीं लेते और जो मर्जी लेके चले जाएं। अब इनकी बातों के अंदर अल्लाह ताला ने यहूद के साजिशी टोले के जो कॉल थे उसका तसलसल है, फरमाया अय्यूत अहदु मिसला मा उती तुम, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को वो चीज दे दी जाए जो तुम्हें दी गई। ये किसका जुमला है, मुश्किल तर्जमा है, गौर से देखिएगा। वही बात पीछे से चल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में लोगों को भेजते थे, पहली नसीहत क्या करते थे कि देखो देखो ला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, उस पे वन लिख लें या ए लिख लें तो बात वाजे हो जाएगी। पहली इंस्ट्रक्शन कि देखो इनकी सारी बातें ना मानना, कहीं तुम भी वहाबी ना हो जाओ। दूसरा उनको डाउट क्या था अपने लोगों को नबी की महफिल में भेजते हुए, अय्यूत अहदम मिसलमा उती तुम, कहीं उनको भी वो चीज ना मिल जाए जो तुमको मिली, यानी कल तक नबूवत रिसालत मजहबी खिदमत हमें मिली हुई थी, कहीं आज मुसलमानों को ना मिल जाए। समझे, कल तक लोग हमारे पास आते थे फतवे लेने बातें पूछने, कहीं अब इनके पास ना चले जाएं। तीसरा डाउट, ओ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम, या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम करें तुम्हारे परवरदिगार के हजूर। ये तीन इंस्ट्रक्शंस दे के अपने साथियों को जासूस बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते थे। किसको ये तीनों बातें समझ आ गई हैं, बात वाजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने लोगों को भेजते, जरा कंसुइयां लेकर आओ, जासूसी करो, अंदर की बातें लो, फिर बाद में तुमने इस्लाम तो छोड़ना ही है, लेकिन अब इस्लाम लेने जा रहे हो तो बात रखना नंबर एक, इनकी हर बात ना मानना, सिर्फ जो बात तुम्हारे पिछले ख्यालात से मिलती है वो मानो। दूसरी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी वही शोहरत और वही दौलत और वही मेंबर्स और वही अरकान और रुकन साथी मिल जाएंगे जो कल तुम्हारे पास थे। खौफ होता है ना कि इनके लोग ज्यादा ना हो जाएं, इनको सोसाइटी में पजीराई ना मिल जाए। और तीसरी बात है कि देखो कल अल्लाह के हाँ तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम करेंगे क्या, कि आके बैठ के सुन के गए थे कि ये नबी सच्चा है फिर भी नहीं माने। अल्लाह ताला कहते कुल इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह, बेन्याज जुमला है। दीन किसी की मेराज नहीं है, लिखे दीन अल हक है, जिसकी जुबान पे हक जारी होगा ना वो बंद गार में बैठ के भी हक की बात करेगा ना, अल्लाह उसको फजल दे देगा। रिसोर्सेज नहीं है तो ना सही, अल्लाह देगा उसके हाथ में। आज भी बहुत सारे लोगों को ये खौफ होता है, जो प्रेस्टीज और जो से हमें सोसाइटी में मिल गई है ये किसी और को ना मिल जाए। वो जरूर मिलेगी, तड़पेंगे फिर भी मिलेगी, क्योंकि फजल अल्लाह का है। युती ही में ये शाह, जिसको चाहता है देता है, और वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला जानने वाला। ये आखिरी दो नाम कितने अहम है, आपको याद है सूरह बकरा में भी ये दो नाम आए थे, कहां जहां यहूद की ये साजिशें थी, वुसअत कल्बी और इल्म, पैदा कर लो अगर तुमने दुनिया में दीन का काम करना है। आज के मुसलमानों या ये माजी के जिनकी हम कहानियां पढ़ रहे हैं, इनमें वुसअत कल्बी नहीं थी, नैरो माइंडेड थे, शॉर्ट साइटेड थे, हम जैसा कोई ना हो, नट शेल में बंद थे, 100 साल के बुजुर्गों के दीन पे ही काफी थे। अल्लाह कहते हैं नहीं, और इल्म हासिल करो, जितना आप दिन ब दिन इल्म लेते जाएंगे आपके अंदर सच आएगा, आपकी बात में वजन पैदा होगा, घंटों की बात आप चंद मिनटों में भी कह देंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी। शर्त एक है कि आपके अंदर वुसअत कल्बी और इल्म हो। और आप देखिए कि एक एक बात मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रही है, अगर आपको नहीं कोई बातें समझ आती तो मुझे बताएं, मैं और भी बात कर लूंगी, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह के फजल में वुसअत है, वो अलीम है, उसकी अता वसी है। असल में यहूद की तंग दिली से अल्लाह अपने अलीम होने का शौर दिला रहे हैं, और उनके इल्म को मिस यूज करने से अपने अलीम होने को बता रहे हैं। और यख्तसु बिरहमति ही मैं यशा, नबी सल्लम पे जो रहमत हुई थी उसका तस्करा किया जा रहा है कि मैंने इनको नबी बनाया, ये मेरा फैसला है, मैं उनको इसका काबिल समझता हूँ, डिजर्व समझ। और रहमत से यहाँ क्या मुराद है, दीन की नेमत और उसका इतमाम। नबी सल्लम पे आकर दीन पूरा हुआ था, कुरान इस्लाम नबूवत सब कुछ इसमें आता है। और रहमत से मुराद आज के दौर में क्या, किसी को अपने दीन की नुमाइंदगी के लिए कबूल कर ले अल्लाह, कि जो तुम मेरे नुमाइंदे बन के दुनिया में दीन की दावत दो। ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह की, इतनी बड़ी रहमत है, सर सजदे से ना उठाएं दीनदार तो हक अदा ना हो कि अल्लाह ने आपको अभी तक अपने दीन के नुमाइंदे बनाया हुआ है। कोई ऐसी बात मुझसे ना निकालिएगा कि अल्लाह पटक के आपको पीछे मार दे। तो याद रखिए कि अल्लाह की खसूसी रहमत का फैसला किस बुनियाद पे होता है, ये एक सवाल है। ये फैसला होता है वुसअत कल्बी और इल्म की बुनियाद पे, गिरोही बुनियादों पे नहीं होता, किसी के नाम के साथ नहीं होता। और जहां भी इतनी बातें की तो आप सबक के आखिर में इनकी चंद खूबियों का भी तस्करा है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। और कहते हैं कि दुश्मन की बुराई करो तो उसकी खूबी भी बयान करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये जिनके जिक्र पढ़े हो सारे ही ऐसे नहीं होते हैं, जो पढ़ने से भी जहन में तसव्वुर आ रहा है। असल बात यह है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इन्होंने तो दीन में खयानतें की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के किस्से तक छुपा दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इतने बामानत हैं। आयत 75 को देखें, वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से मन कोई ऐसा भी है, इन तामन हो, अगर तू अमीन बनाए उसको, यानी उसके पास कोई अमानत रखे, तो उसको कोई बात दे के ये मेरे पैसे रख लो या कुछ भी कर दो। कितनी बिकिनतार, ढेरों ढेर माल। किनतार याद है पीछे किनतरा से, वही युद्धि ही इलाइक, वो तो अदा कर देता है आपको, लौटा देता है आपकी तरफ। वमिन हो मन इन तामन हो भी दीनारिन, बाज ऐसे भी है जिनको अगर एक दीनार भी दे दो, ला युद्धि ही इलाइक, वो एक भी नहीं लेता, एक भी नहीं वापस करता। यानी कोई हजारों पे भी ईमान नहीं बेचता और कोई एक दीनार पे बेच लेता है। हाँ वापिस कब करेगा, शर्त एक, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, जब तक कि तुम उसके सर पे खड़े रहो। ये दुमता क्या है असल में, दामा से दवाम, मीम ता इसमें रूट की नहीं है, मत आप इसका दाल मीम ता रूट लिख दें। कायम दायम, पाकिस्तान कायम दायम, वही लफ्ज है। यानी दो मुख्तलिफ किरदार बताए गए। असल में यहूद की एक जहनीयत का तस्करा है कि वो दुनिया के सारे माल को अपनी मलकियत समझते हैं। वो कहते हैं यहूद जो है ना, ये इंसान है बाकी जानवर हैं, जेंटाइल एंड गोयम्स, दो लफ्ज इनकी किताबों में आपको मिलेंगे। कहते हैं सारी दुनिया जानवर है, भेड़ बकरियां हैं, और यहूद इंसान है। चाहे भेड़ों को काट दो, कत्ल कर दो, इट्स फाइन, इनको बेच दो जाके दूसरों के यहाँ तो इट्स फाइन, और इनका पैसा खा लो, फाइन। इसीलिए आगे अल्लाह ने कहा जालिक बिअन्नहुम कालू, ये सोच कहां से पैदा हुई, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहते हैं लैसा अलैना फिल उम्मीजीन सबील, उम्मीजीन के मामले में हम पर कोई मलामत नहीं। उम्मी किसको कहते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को, और खास तौर पे अरबों को। कहते थे सारी दुनिया अनपढ़ है, ये सबील से क्या मुराद है, पकड़। हम किसी का माल खा लें, किसी का खजाना लें, किसी के तेल पे कब्जा करें, किसी के सोने पे करें, किसी की जमीनों से अनाज लें, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम दुनिया के कहना चाहिए कि नफे नुकसान के मालिक हैं, किसी का माल हड़प कर ले कोई नहीं। यानी यहूदी और गैर यहूदी की टर्म वो पेश करते थे। कहते थे इंसानियत का शर्फ ही सिर्फ यहूद को है, बाकी तो इंसान नुमा हिवाद है, यानी गोयम्स एंड जेंटाइल्स हैं, और इनसे फायदा उठाना हमारा। कि जैसे घोड़े को टांगे में जोत लो, या घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, या घोड़े को काट के खा लो, बैल को हल के लिए जोत लो, या गोश्त काट के खा लो, अपनी मर्जी है। और ये वो बातें अपनी बात में लिखते हैं किताबों में, लूट खसूट करो, इनका माल खाओ, जो मर्जी करो। और आपको पता है कि एक फिल्म भी बनी है इसके ऊपर, द अदर साइड ऑफ इसराइल डॉक्यूमेंट्री मूवी है, वहां उन्होंने साफ ये बातें कही हैं, अपनी किताबों के हवाले उसमें मौजूद हैं, कि देखिए कि ये लोग आप दूसरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल क्या ये सच है जो ये सोचते हैं, नहीं। वह यकूलूना अलल्लाहिल कज़िब, ये अल्लाह पे झूठ बांधते हैं। वहुम यालमून, और वो जानते हैं, यानी जानते बूझते ऐसे गलत अकायद अख्तियार करते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या है फिर, कौन हक पे कौन बातिल? क्या यहूदियत नसरानियत और इस्लाम तीन नाम काफी हैं जन्नत में जाने के लिए? नो, बला मन औफा बिअहदिही, बल्कि जिसने पूरा किया अपना अहद, वत्तका, और तकवा इख्तियार किया, फइन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, तो अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है मुत्तकीन से। असल देखिए अल्लाह के पास ये चीज जाएगी, वफाए अहद और तकवा, ये दो खूबियां लिख लें अपने अंदर। वफाए अहद क्या होता है, वादे करके पूरे करो, कमिटमेंट निभाओ, अपनी बातों को निभाओ, और वत्तका, बचते बचाते, डरते डराते इस दुनिया से गुजरो। फइन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। इसके बरक्स, इन लजीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अहद को फरोख्त करते हैं, वह ईमानिहिम समनन कलीला, और अपनी कस्मों को बेचते हैं थोड़ी कीमत पे। उलाइक ला खलाक लहुम फिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। सबसे बड़ी सजा क्या है कि वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा। आप जानते हैं ना किसी से कलाम ना करना नाराजगी की कौन सी हद होती है, आखिरी हद होती है। मैं इस काबिल ही नहीं आपको समझती कि मैं आपसे बात करूं। डांटता आप किसको है बंदा जिससे प्यार होता है, गुस्सा किस पे करता है जिस पे मान होता है, ये अपना ये सुन लेगा ये सह लेगा, और किसको डांटता और किस पे गुस्सा निकालता है जिसके पलटने की उम्मीद होती है। अभी इन तिलों में तेल है, वापस बुला लो। और जो बंदा अपने आप को इस तरह से साबित कर दे कि मैं तो सूख गया हूं, मेरे अंदर तो ईमान का आखिरी कतरा भी नहीं रहा, तो कहा अल्लाह युकल्लिमुहुमुल्लाह, फिर अल्लाह कलाम ही नहीं करता। दुनिया में अल्लाह के कलाम का क्या तरीका है? नमाज पढ़ते हैं तो हम कलाम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह कलाम करता है। तो वला युकल्लिमुहुमुल्लाह का एक मानी लिख ले, अल्लाह उनको अपने कलाम के पढ़ने की तौफीक ही नहीं देता। रिलैक्स्ड खुश बाश जिंदगी गुजारो, मौजें करो जितनी कर सकते हो, नाचो कूदो उछलो टापो कि तुम अल्लाह के कलाम से दूर हो गए हो। कहाँ दिल पे कोई एक राई के दाने का बोझ पड़े उन दिलों पे जो अल्लाह के कलाम से कटते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की सजा होती है। कोई गिल्ट आ भी जाए 4 दिन, कहते हैं इट्स फाइन, हमने कौन सा हमेशा के लिए छोड़ा है, फिर शुरू कर लेंगे, और वो आज तक ना फिर आई। खुशियों में जिसको दीन छुटे, जिसका गम में दीन छुटे, जो आजमाइशों में छुटे, अल्लाह युकल्लिमुहुम अल्लाह। मेरी नज़र में आज जो लोग कुरान सुनते हैं और उनको समझ नहीं आता, पढ़ते हैं और समझ नहीं आता, और जो मैंने अभी मिसाल दी है, तिलावते सुन के उठ के नाचते सुबहान अल्लाह, बेलें देते पैसे दिछावर करते, वो ला युकल्लिमुहुम अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सजा में आए हुए हैं। अल्लाह कहता है तुम्हें नहीं जरूरत तो मुझे भी नहीं। फिर दूसरी बात, वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह उनकी तरफ निगाह नहीं करेगा क़यामत के दिन। लोग क़यामत के दिन अल्लाह की निगाह के कैसे मुंतजर होंगे? हदीस आपके सामने आएगी, आगे तवील रिवायत है, लोग खड़े हैं और खड़े हैं और खड़े हैं और हिसाब ही नहीं शुरू हो रहा। आदम के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, फिर इब्राहिम के पास जाएंगे, फिर मूसा, फिर सबके पास, कि अल्लाह से बोल दो कि हिसाब सिर्फ शुरू कर दे, ये नहीं कि जन्नत दे, थक गए हैं, खिड़की खुल जाए ताकि उम्मीद तो लगे ना, काम होना शुरू हो गया। ला यंजुरुहिम, चलो भाग जाओ। जब तक वो बेनियाज मालिक नहीं चाहेगा बात ही नहीं करेगा। और उस दिन अल्लाह कहता है मैं ऐसे लोगों को ओवर लुक करूंगा, आई विल नॉट लुक एट देम। आप देखिए जिससे दिल में गुस्सा होना आप उसको देखना नहीं पसंद करते, नजरें किससे मिलती हैं? यानी एक तो अदब और बेअदबी के मामले ना, वो एक और चीज होती है, लेकिन इंसान आम तौर पे उससे नजर नहीं मिलाना चाहता जिसको पसंद ना करे या जिस पे गुस्सा हो। और वला युज़क्की है, ये उससे भी बड़ी सजा, तज़किया नहीं करेगा, यानी जो गुनाह किया था भुगतो, ज़कात नहीं दी थी अब इसकी सजा भुगतो, नमाज नहीं पढ़ी थी जहन्नुम में जाओ। आखिरत में अल्लाह ने बहुत तज़किए करने आपको होते, और दुनिया का तज़किया क्या है कि अल्लाह कहते हैं जिस गंदगी में पड़े हो पड़े रहो, माँ अपने बच्चे का पैम्पर चेंज ना ना करे कि पड़े रहो जिस हाल में बैठे हो, तो क्या उसका हाल हो? अगर अल्लाह हमारा आजकल तस्किया ना करे तो हम कितने गंदे हो चुके होते इस वक्त, किस किस गुनाह में पड़ते हमें अंदाजा भी नहीं है। और आखिरत में तस्किया ना होना, हर गुनाह की सजा मिलेगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिल्कुल यही आयत 174 बकरा में गुजर चुकी है, अगर आपको याद नहीं है तो नंबर लिख ले। सारी बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला किसी का मुख्ताज नहीं है। अल्लाह सुबहान ताला बंदे के साथ मामला वैसे ही करता है जैसे कि वो डिजर्व करता है, सजा नहीं देता अल्लाह, और अल्लाह बगैर किए की सजा नहीं देता और बहुत सारे कियों को माफ करता है। और ये जो आयत 75 में आया ना कि खजाने का मालिक कर दो, इसके साथ वाकया है, सुन लीजिए शान नजूल में। अशस बिन कैस कहते हैं, बुखारी की यह रिवायत है, कहते हैं ये आयत मेरे हक में नाजिल हुई। मेरे चचा साहब भाई की जमीन में मेरा कुआं था, आपने मुझसे फरमाया कि गवाह लाओ वरना इससे कसम ले लो। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह, वो तो कसम खा जाएगा, यानी झूठी कसम खा जाएगा। आपने फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान का माल मार लेने की नीयत से ख्वाम खा झूठी कसम खाए तो जब अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होगा। बुखारी की रिवायत है। फिर वो एक मारू वाक्य आपने सुना होगा, एक शख्स ने 1,000 दीनार लिए और दरिया के किनारे रहता था। फिर एक महीने बाद देने आया तो कश्ती नहीं मिली। फिर उसने कहा कि मेरा वादा झूठा ना होते, एक लकड़ी ली और उसके अंदर सुराख करके वो अशरफियां डाल के उसको बंद किया। अल्लाह से कहा तेरे नाम पे कर्जा लिया था, अब तेरे नाम पे वापस कर रहा हूँ। उसको दरिया में डाल के चला गया। दूसरी तरफ दूसरा शख्स आया हुआ था, लेकिन उसको वो आदमी ना मिला का, शायद देर हो गई होगी। चलो आया हूँ, लकड़ी ले जाऊं, घर में आग जलाऊंगा। वही लकड़ी जिसमें अशरफियां थी जाके ले गया और घर जाके काटी तो उसमें अशरफियां निकल गई। समझ गया कि ये मेरी मुझे मिल गई। कुछ अरसे बाद वो दोबारा जमा करके वापस आया देने, तो उसने कहा मुझे तो वो वही मिल गई। तो ये आयत के साथ वो वाकया भी आपको अक्सर तफसीर में मिलेगा। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी आलिम थे, इनको एक करशी ने 1,200 ओकिया सोना दिया कि रख लो मेरा अमानत। 1,200 ओकिया एक ह्यूज अमाउंट है। इन्होंने ये सारा वापस कर दिया। बाज कहते हैं ये उनकी शान में भी आयत उतरी है। बाज हैं सर पे खड़े रहो तो नहीं देते, हमारे मुल्कों में ताज कहते हैं दे के भूल जाओ, बल्कि मुजरिम बन जाओ, किराए पे घर दे दो भूल जाओ। बाज कहते हैं काब बिन अशरफ के बारे में ये बात है कि 1 दीनार के लिए ईमान बेच लेता था। अल्लाह नोज दी बेस्ट। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला अपने लिए रखे, हमें खालिस करे। और ये जो बीच में बात आई थी ना कि यहूद के ये जुमले के जी सारी दुनिया तो गैर यहूद के लिए है, इस पे भी एक दो बातें सुन लीजिए। तफसीरुल कुरान बहुत खूबसूरत तफसीर है, तो उसका एक कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ। तालमूत में कहा गया कि अगर इसराइली का बैल, इसराइली कौन है, यहूदी, बैल गैर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो इस पर कोई तावान नहीं, इट्स ओके, यानी उनके बैल भी बख्शे बख्शाए हो गए। मगर गैर इसराइली का बैल अगर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो इस पर तावान है। अगर किसी को कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो इसे देखना चाहिए कि गिर्दो पेश आबादी किन की है। अगर इसराइलियों की हो तो ऐलान करे कि उसकी चीज वापस देनी है, और अगर गैर इसराइलियों की हो तो बगैर ऐलान किए वो चीज अपने पास रख ले। कहते हैं दुनिया हमारी है। अब देखे ना, ये मेरा फोन है, तो अगर मैं आप में से किसी के पास देखूंगी तो मैं तो पकड़ लूंगी, मैं तो नहीं आपसे पूछूंगी। लेकिन आपका फोन होगा तो मैं तो नहीं पकड़ूंगी। पूरी दुनिया पे जो कब्जे की बातें हैं वो किस सोच की तहत है, इस सोच की तहत है कि ये हमारी थी, इन्होंने ली भी है। इब्ने अब्बास से लोग मसला पूछते हैं कि जिम्मी या कुफार की मुर्गी बकरी वगैरह कभी गजवे की हालत में हमें मिल जाती है, तो हम तो समझते हैं कि इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपने फरमाया ठीक, यही अहले किताब भी कहते थे कि उम्मियों का माल लेने में कोई हर्ज नहीं। सुनो, जब वो जिजिया अदा कर रहे हैं तो इनका कोई माल तुम पर हलाल नहीं, हाँ जब वो खुशी से दे दें तो ये और बात है। यदि मुसलमानों को उन नॉन मुस्लिम जिनसे जिजिया लिया जाए उनकी एक मुर्गी भी लेने का हक नहीं है, कहा यही बात तो यहूद कहते थे, आज तुमने भी ये कहनी शुरू कर दी। कितना खौफ आता है इन आयतों को और इन बातों को पढ़कर कि किस तरीके से दूसरों का माल नाहक खाना गुनाह भी और जुर्म भी है। अल्लाह ताला आपको मुझे महफूज करे। और ये जो आखिरी आयत में हमें बात मिली है ना कि अल्लाह ताला देखेगा नहीं सुनेगा नहीं, ये आयतें आगे भी आएंगी और हदीस में तवील लिस्ट मिलती है ऐसे लोगों की जिनके साथ क़यामत के दिन अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे। इसी आयत की, आयत 77 की, आयशा ने नजूल का वाक्य सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन अबी औफा कहते हैं कि एक शख्स माल बेचने के लिए खड़ा हुआ और इसने अल्लाह की कसम खा ली कि मैंने इसके इवज इतना इतना माल दिया है, यानी झूठ बोल दिया अपने माल के बारे में, हालांकि माल इतने का नहीं था जो उसने बताया। ताजरों की अक्सर ये आदत होती है कि ज्यादा नफा लेने के लिए गाहकों को कहते हैं ये तो इतने का बिक रहा है, ये तो मुझे इतने का पड़ा है। तो कहते हैं कि इस पर आयत इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाही वाईमानिहिम समनन क़लीला उतरी, ये बुखारी की रिवायत है। इसी आयत की तफसीर में आप वहां से नोट भी कर सकते हैं खुद भी लेकर। और अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत पे बेचने से क्या मुराद है कि उसको पूरा न करना और दुनिया के फायदों को लेना और मसलतों का शिकार होकर अल्लाह की बातों को भूल जाना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अहदों वादों और अपनी चीज़ों का पाबंद कर दें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें। और ऐसे लोग मुनाफ़क़त के दर्जे पे, अल्लाह के नबी ने कहा कि मुनाफिक की अलामतों में 3 में से एक क्या है कि वादा करे तो खिलाफ कर देता है, और अल्लाह का खौफ ही वादों को पूरा कराता है। जो बंदा बेखौफ है वो कभी अल्लाह और बंदों से किए हुए वादे पूरे नहीं करेगा। दूसरों को मुतमईन करना कितना आसान है। आपने फरमाया जिसने कोई माल हासिल करने के लिए झूठी कसम खाई वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे नाराज होगा। ये बुखारी की रिवायत है 4549 नंबर की, और अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। अबू ज़र की रिवायत सुन लीजिए, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना ही इनकी तरफ नज़रे रहमत से देखेगा, ना इनको गुनाहों से पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अबू ज़र कहते हैं कि आपने 3 बार ये फरमाया, ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی ایسے لوگ تو پھر سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، ہیں کون یہ لوگ؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یعنی مرد جو اپنے کپڑے کو شان کے ساتھ نیچے لٹکائے، نمبر دو دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب میں سے ہمیں نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأن قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.